Iran Radio Podcast.
वैज्ञानिक फ्रैंक होम्स न्यूजीलैंड के नागरिक थे जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में सेवा की थी। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 48वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे फ्रैंक होम्स की। युद्ध के आखिरी दिनों में उन्हें सेना में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए इथोपिया भेज दिया गया था। यात्रा के दौरान उन्हें अरब व्यापारियों से पता चला कि फारस की खाड़ी के तट पर जमीन से तेल रिस रहा है। माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री होल्डर होम्स के लिए तेल रिसाव की खबर बहुत दिलचस्प थी। युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने सेना छोड़ दी और तेल की तलाश में फारस खाड़ी के दक्षिणी तट का रुख किया। वो फारस खाड़ी के एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे ताकि तेल संसाधनों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकें। फारस की खाड़ी के तट पर फैले ब्रिटिश एजेंट उन्हें संदेह की नज़र से देखते थे। उन्होंने उन्हें तेल आवारा का नाम दे दिया था, लेकिन अरब उन्हें अबू नफ्त या तेल का बाप कहते थे। बहरीन में होने वाले तेल रिसाव ने होम्स को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। उन्होंने बहरीन के शासक के साथ वार्ता शुरू कर दी, लेकिन पता चला कि शासक के सामने सबसे अहम ज़रूरत मीठे पानी की है। होम्स ने एक गहरा कुआं खोदा। 1925 में होम्स के खोदे गए कुएं से जब पानी निकला तो बहरीन के शासक ने इसके इनाम के तौर पर तेल निकालने का अधिकार होम्स को दे दिया। होम्स अधिकार पत्र लेकर एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी के पास गए, लेकिन कंपनी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि बहरीन और सऊदी अरब में तेल नहीं निकल सकता। उसके बाद होम्स अमेरिकन ऑयल कंपनियों के पास गए। साउदर्न कैलिफोर्निया सोकल कंपनी बहरीन में तेल की खोज के लिए तैयार हो गई, लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट थी। अंग्रेज फारस खाड़ी में अमरीकी कंपनियों को तेल की खोज की अनुमति नहीं देते थे। पहले विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड ने बहरीन और कुवैत के साथ समझौता कर लिया था, जिसके तहत इन दोनों देशों में तेल की खोज और उसे निकालने का अधिकार सिर्फ इंग्लैंड के पास था। अमेरिकी सरकार ने सोकल कंपनी के बचाव के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत शुरू की। अगर शेखों के इलाकों में तेल मिल जाता तो स्थानीय शासकों के पास थोड़ा पैसा आ जाता और वो वित्तीय सहायता के लिए इंग्लैंड को परेशान नहीं करते। निकाले गए तेल को ब्रिटिश नौसेना को भी बेचा जा सकता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार सहमति के बाद सोकल ने बहरीन में तेल की खोज का काम शुरू कर दिया। 1932 में दक्षिणी फारस की खाड़ी के बहरीन द्वीप पर पहला तेल कुआं निकला। बहरीन अरब प्रायद्वीप से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि सऊदी अरब में भी तेल पाया जा सकता है। अब एक एक करके तेल कंपनियों की नज़र सऊदी अरब पर टिक गई। सऊदी अरब पर अब्दुल अजीज़ बिन सऊद का शासन था, एक ऐसा शासक जिसके देश का कुल ख़जाना एक ऊँट पर लादा जा सकता था, लेकिन अब उसने भी बेपनाह दौलत के सपने देखने शुरू कर दिए। पहले विश्व युद्ध के बाद तक आले सऊद के पास आमदनी का एकमात्र स्रोत था हाजियों का, जो ज़ियारत और हज के लिए मक्का की यात्रा करते थे। 1930 में दुनिया बहुत ही विकट आर्थिक संकट का सामना कर रही थी। अब्दुल अजीज़ के लिए पैसे की कमी एक बड़ी समस्या बन गई थी। इन्हीं दिनों हैरी सेंट जॉन फिल्बी नामक एक अंग्रेज़ मित्र अब्दुल अजीज़ के कान में उत्साहजनक बातें फुसफुसा रहा था। फिल्बी ने अपना परिचय एक अंग्रेज़ व्यावसायिक के रूप में करवाया जो इससे पहले ब्रिटिश सरकार की सेवा में था। उसने दावा किया कि उसने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। फिल्बी को अरब कबीलों और उनके सरदारों की वंशावली लिखना बहुत पसंद था। अब्दुल अजीज़ को भी ये बात बहुत पसंद थी। एक बातचीत में फिल्बी ने अरब के विभिन्न कबीलों के पूर्वजों के बारे में 24 घंटे तक बात की और अब्दुल अजीज़ का दिल जीत लिया। उसने अब्दुलाजीज़ के मार्गदर्शन में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब्दुलाजीज़ ने उसके लिए अब्दुल्ला नाम चुना। 1930 के दशक के गरीबी भरे दिनों में एक दिन ये दोनों घनिष्ठ दोस्त रेगिस्तान की ओर यात्रा पर निकले। फिर भी देख रहा था कि उसका दोस्त बहुत उदास है। उसने बहुत आहिस्ता से कहा, सुल्तान और उनका देश ज़मीन में छिपे खजाने पर बैठा है। उसने पहले सऊदी अरब में तेल की संभावना के बारे में बात की। अब्दुल अजीज़ ने आह भरते हुए कहा, जो कोई मुझे 10 लाख पाउंड देगा मैं उसे हर वो विशेषाधिकार प्रदान कर दूंगा जो वो चाहेगा। फिल्मी ने तुरंत अपने एक मित्र का उदाहरण दिया, जिसने एक बार कहा था, मैं सिर्फ महामहिम सुल्तान से हाथ मिलाने के लिए अपनी एक आँख दे दूँगा। यह आदमी एक प्रमुख भूवैज्ञानिक था जो रेगिस्तान में ज़मीन के नीचे किसी भी दुर्लभ चीज़ का पता लगा सकता था, अब वो पानी हो या तेल। फिल्बी के मित्र ने सोकल कंपनी को कि जो पहले ही बहरीन में तेल खोज चुकी थी, सऊदी अरब में तेल होने का आश्वासन दिलाया। सोकल ने 1933 में अब्दुल अजीज़ के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के तहत सोकल कंपनी अब्दुल अजीज़ को 55,000 पाउंड का भुगतान करती और तेल की खोज हो जाने के बाद उसे 1 लाख का भुगतान करेगी। इस भुगतान के बदले उसे 60 साल तक सऊदी अरब के एक बड़े हिस्से में तेल निकालने का अधिकार प्राप्त होगा। सोकल सोने के रूप में भुगतान किए जाने वाले 55,000 पाउंड अमेरिका से निकालने में असमर्थ रही, लेकिन सोकल का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ब्रिटिश कंपनी ने रॉयल मिंट से सिक्के प्राप्त कर लिए और उन्हें 7 बड़े बक्सों में सऊदी अरब भेज दिया। अंग्रेज़ों ने सिर्फ इंग्लैंड के राजाओं की तस्वीरों वाले सिक्के भेजे थे। उन्हें यह डर था कि महारानी विक्टोरिया की तस्वीर वाले सिक्कों का सऊदी अरब जैसे पितृप्रधान देश में स्वागत नहीं होगा। 1930 में जिस समय पूरी दुनिया आर्थिक संकट की चपेट में थी, मिकी मोतो नामक एक साधारण जापानी दुकानदार को सीप के उत्पादन का विचार आया और वो आर्टिफिशियल मोती का उत्पादन करने में सक्षम हो गया। बड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल मोती बाजार में आ गए, जिससे कुवैतियों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई, जो वर्षों से मछली पकड़कर और मोती बेचकर अपनी आजीविका चला रहे थे। पहले विश्व युद्ध के बाद कुवैत ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुवैत का अमीर ऐसे किसी भी व्यक्ति या देश के साथ समझौता करने को तैयार था जो धन के बदले तेल की खोज का अधिकार प्राप्त करना चाहता हो। जब तेल के खोजी होम्स ने कुवैत के अमीर से मुलाकात की तो अमीर ने उससे कहा, ये देखकर कि बहरीन में तेल निकाला जा रहा है और कुवैत में कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में खंजर चुभ जाता है। होम्स ने गल्फ नामक एक कंपनी की स्थापना की थी और न्यूजीलैंड में जन्मे और ब्रिटिश सेना के सदस्य होने के बावजूद उसने अपनी कंपनी को संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत किया। जब एंग्लो ईरानी तेल कंपनी को गल्फ कंपनी की कुवैत के अमीर के साथ चर्चा के बारे में पता चला तो उसने कुवैती तेल पर विशेषाधिकार हासिल करने के लिए हस्तक्षेप किया। कुवैत पर अंग्रेज़ों का कब्जा था और वे अमेरिकी कंपनी को वहां काम करने से रोक सकते थे, लेकिन उनका इरादा अमेरिका के साथ टकराव का नहीं था, इसलिए वे इस बात पर सहमत हो गए कि गल्फ और एंग्लो ईरानी कंपनियां कुवैत तेल के मुनाफे को आपस में बांट लेंगी और उनसे ये प्रत्येक को 50% शेयर मिलेंगे। लेकिन इंग्लैंड अभी भी बड़ा हिस्सा चाहता था, एक ऐसा हिस्सा जो उसे क्षेत्र के शासकों से लेना था। अंग्रेज़ों ने बहरीन और कुवैत के शासकों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए कि वे अपने तेल राजस्व को किस प्रकार खर्च करें। तेल राजस्व का एक तिहाई हिस्सा अमीर और उसके परिवार के खर्चों पर सर्फ और खर्च किया जाता था, एक तिहाई देश के विकास और सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण पर खर्च किया जाता था और एक तिहाई अंग्रेजी बैंकों में जमा किया जाता था। जब दूसरे विश्व युद्ध की आग भड़की तो अमेरिकी बहुत भयभीत थे। कुछ समय तक तेल का कोई नया स्रोत नहीं मिला था और अमेरिकियों को अपने यूरोपीय सहयोगियों की 90% आवश्यकताओं की आपूर्ति करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उन्हें ये चिंता होने लगी कि उनके कुओं का तेल खत्म हो जाएगा और अगले विश्व युद्ध में उन्हें दूसरे लोगों के तेल पर निर्भर रहना पड़ेगा। अमेरिकी सरकार के एक मंत्री ने उन दिनों एक आर्टिकल में लिखा, अमेरिका दुनिया का तेल सम्राट है लेकिन अब उसका ताज झुक गया है और एक आंख पर गिर गया है, हमारा तेल खत्म हो रहा है। अमेरिकियों को यूरोप को तेल पहुंचाने के लिए एक नए स्रोत की तलाश करनी पड़ी ताकि अमेरिका की भविष्य की सुरक्षा के लिए अमेरिकी तेल को छूता छोड़ा जाए। इस स्रोत को सऊदी अरब के रूप में देखा गया। इससे पहले अमेरिकी कंपनी सोकल ने अरबों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सऊदी अरब में वास्तव में कितना तेल है और क्या वहाँ तपते रेगिस्तान के नीचे इतना तेल छुपा हुआ है कि यूरोप को अमेरिका के तेल से आवश्यकता मुक्ति मिल जाए। अमेरिकियों ने डिगोलियर नामक एक प्रमुख भूविज्ञानी को सऊदी अरब भेजा। अरबों में अपने मेहमानों का स्वागत भेड़ की आंखों से करने की प्रथा थी। डिगोलियर ने बड़े शौक से भेड़ की आंखें खाईं और फिर आंखें खोलकर तेल की खोज में निकल पड़े। उन्होंने जल्दी निष्कर्ष निकाला कि ये रेतीला रेगिस्तान सोने का देश या एल्डोराडो है। सऊदी अरब यूरोप में अरबों बैरल तेल भेज सकता था। डिगोलियर ने अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी से कहा, यहाँ का तेल मानव इतिहास में किसी भी देश द्वारा अर्जित सबसे बड़ा खजाना है। युद्ध के बाद मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कम हो गई और अब्दुल अजीज बिन सऊद की जेबें फिर खाली होने लगीं। अरब तलवारों और चाकुओं की बाजार में कुछ खास डिमांड नहीं थी। धन की तलाश में आले सऊद ने उन अमेरिकियों से संपर्क किया जिनके साथ उन्होंने पहले सौदा किया था। उन्होंने एक अमेरिकी से कहा, अरबों के पास धर्म है और अमेरिकियों के पास पैसा है। अमेरिकी कंपनियां आले सऊद को और अधिक कर्ज नहीं देना चाहती थीं, लेकिन वे भविष्य में मिलने वाली रियायतें भी नहीं खोना चाहती थीं। जब इंग्लैंड आले सऊद को बड़ा कर्ज देने के लिए सहमत हुआ तो इन कंपनियों ने सऊदी राजा को ये समझाने की कोशिश की कि ये ऋण वास्तव में अमेरिका से आया है, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध के समय इंग्लैंड को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। सऊदी अरब के नीचे तेल के समुद्र के बारे में डिगोलियर की रिपोर्ट के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। जिस समय अमेरिकियों को सऊदी तेल के बारे में रोमांचक रिपोर्ट मिल रही थी, उसी समय ब्रिटिश लोग इस अंतहीन रेगिस्तान में गुप्त रूप से तेल की खोज कर रहे थे। ब्रिटिश भूवैज्ञानिकों का एक समूह जीव विज्ञानी के रूप में सऊदी अरब गया, जिन्हें रेगिस्तान में टिड्डियों के आक्रमण का समाधान ढूंढना था। अमेरिकी कंपनियों के कर्मचारियों को जल्द ही ये विश्वास हो गया कि ये लोग टिड्डियों से छुटकारे के लिए नहीं बल्कि तेल की तलाश में वहाँ पहुँचे हैं। हालांकि अमेरिका और इंग्लैंड युद्ध में सहयोगी थे, लेकिन वे तेल को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। अमेरिकी नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, इंग्लैंड जल्द ही हमारी तेल कंपनियों को बाहर कर देगा और ब्रिटिश कंपनियाँ उनकी जगह ले लेंगी। कुछ समय बाद सऊदी तेल में अमेरिका का हिस्सा निर्धारित करने के लिए व्हाइट हाउस में एक बैठक आयोजित हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बैठक में इस बात पर जोर दिया कि हमारा हिस्सा 100% से कम नहीं होगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में ब्रिटिश राजदूत को आमंत्रित किया और कहा, ईरान का तेल आपका, हम इराक और कुवैत के तेल में साझेदार हैं, इसलिए सऊदी तेल पर सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए। जब राजदूत ने इस बात की रिपोर्ट अपने देश को भेजी तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को देश में लिखा, हम एक साझा बलिदान के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यहाँ हर कोई चिंतित है कि अमेरिका हमें मध्य पूर्व में हमारी संपत्तियों से अलग करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, हमें भी ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि आप सऊदी अरब के साथ हमारी कंपनियों की रियायतों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उसके जवाब में लिखा, सऊदी अरब में आपकी रियायतों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा देश तेल के संबंध में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करता है और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करके हमने जो हासिल किया है उससे हम स्वयं को वंचित नहीं होने देंगे, कम से कम जब तक आपका ये सेवक ड्यूटी पर है। सऊदी तेल को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच प्रतिस्पर्धा उस समय तेज हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वेज नहर के विषय पर आले सऊद से बातचीत की। आले सऊद एक अमेरिकी जहाज पर डेरा डाले हुए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें कैप्टन के केबिन में आराम करने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं तंबू के नीचे अधिक आरामदेह महसूस करता हूँ। हालांकि जहाज में मांस भरपूर मात्रा में भरा हुआ था, लेकिन आले सऊद अपने साथ 8 जीवित भेड़ें भी लेकर गए थे ताकि वहाँ उन्हें भोजन की समस्या ना हो। आले सऊद धूम्रपान को हराम मानते थे, इसलिए जहाज के डेक पर जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिफ्ट के बटन को इतनी देर तक दबाए रखा کہ وہ دو سگریٹ ختم کر سکیں، اور سلطان سے بات کرتے ہوئے ایک سمے ایک سگریٹ جلانے سے بچ سکیں۔ آل سعود کے تمبو میں ان کی بات چیت 5 گھنٹے تک چلی۔ اسے آل سعود کی امریکی راشٹرپتی سے ملاقات کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ کے روپ میں مانا گیا۔ سعودی عرب کے شاہ کے سامنے گرو سے دھومرپان کرنے والے برٹش ادھیکاری اس پریاس میں تھے کہ اپنے پرتدوندی کے وپریت سفل ہو جائیں، لیکن انہیں سفلتا نہیں ملی۔ کئی تیل پرتسپردھاؤں کی طرح سعودی عرب میں بھی انہیں سنیکت راج امریکہ کے سامنے جھکنا پڑا۔ امریکہ کے ہاتھ میں سعودی تیل تھا، اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے ایرانی تیل کی کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ ورشوں بعد 1954 کے کرسورٹیم سمجھوتے میں اس نے ایرانی تیل کا ایک حصہ بھی لے لیا، تاکہ یہ سنشچت کیا جا سکے کہ انگریز اپنے متر اور سہیوگی کے ورودھ میں نہ چلے جائے۔ دوستو، یہ پوڈ کاسٹ آپ نے ایران ریڈیو کی اور سے سنا۔ اگر آپ ہمارے اور بھی پوڈ کاسٹ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ ایڈریس ہے iranradio.ir/hi۔